नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के स्पार्क विंग के 14वें अंतर्राष्ट्रीय स्पिरिचुअलिटी इन रिसर्चर्स कॉन्फ्रेंस और मेडिटेशन रिट्रीट में। हर साल जब हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए हमारे सभी दोस्त ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू पधारते हैं, मगर इस बार बदलते हुए वक्त के साथ इस कॉन्फ्रेंस का परिप्रेक्ष्य भी बदला है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस को हम ई कॉन्फ्रेंस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ई कॉन्फ्रेंस के जरिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। हम रूबरू एक दूसरे से आमने सामने फिजिकली ना सही, मगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जरूर पा रहे हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से तहे दिल से स्वागत है। इस बार का थीम है इनर ट्रैंक्विलिटी, लीडिंग रिसर्च फॉर अ परफेक्ट वर्ल्ड। जब हम इनर ट्रैंक्विलिटी की बात करते हैं, बाहर जब असमंजस जैसा माहौल हो, कंफ्यूजन हो, बाहर एक उथल पुथल हो, तो ऐसे समय पर अंदर ट्रैंक्विल रह पाना, इनर ट्रैंक्विलिटी को डेवलप कर पाना, क्या ये पॉसिबल है? और रिसर्च के फील्ड में, स्पेशली जब रिसर्च को लीड करने की बात आती है, तब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अंदर से ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखते हैं तो हम बेहतर रिसर्च कर पाते हैं, बेहतर लीड कर पाते हैं और एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे हमारे ऐसे विशिष्ट अतिथि हैं, ऐसे वक्ता हैं जो अपने अपने फील्ड के महारथी हैं, जिन्होंने अपने फील्ड्स में बड़ी ऊंचाइयां छुई हैं। इस विषय पर उनकी राय जानने का, उनके विचारों को समझने का एक बहुत ही सुंदर मौका है। इस कॉन्फ्रेंस में अकम्प्लिश्ड रिसर्चर्स और अकम्प्लिश्ड योगीज इनर ट्रैंक्विलिटी के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले दोनों पैरेलल्स को देखने का एक मौका मिलेगा। चलिए इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को। और इस उद्घाटन सत्र में पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी को, जो एक बहुत ही सुंदर गीत के साथ, प्रभु स्मृति के साथ इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए हमारे साथ आ रही हैं। भारत की संस्कृति रही है कि जब भी हम किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम उस दिव्य सत्ता को, उस परम सत्ता को हमारे बीच आमंत्रित करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की मधुर स्मृति से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन संभलपुर उड़ीसा से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं एक बहुत ही सुंदर गीत।
घर वार है, प्यारा प्रभु परिवार है, सम्मेलन में
ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। स्वागत बारंबार है और आबू तीरथ आपका घर है और इस घर में आपका स्वागत है और बार बार स्वागत है। स्वागत की इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमारे समक्ष स्वागत नृत्य लेकर कुछ कुमारियां आने वाली हैं और ये कटक झांझरी मंगला ब्रह्मा कुमारी ओडिशा से ये नृत्य की प्रस्तुति कर रही हैं। कुमारी अंकिता, खुशी, शिखा और मामली, इन सभी कन्याओं का आप स्वागत करें और इनके स्वागत नृत्य को एंजॉय करें।
प्रभु मिलन की मस्ती में हर मन मगन, अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले,
अरमा के फूल खिले अपनों से आज मिले, कहते नयन
मंगलम मंगलम आनंदम परम सुखम
सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम गुनगुनाती है पवन मुस्कुराता है चमन लाया ये मौसम खुशियों के प्यार का।
बहुत बहुत धन्यवाद इन नन्ही कुमारियों का जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी कटक से हमारे बीच में ये बहुत ही सुंदर स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने ये भी एंजॉय किया होगा। अब शब्दों से स्वागत करने के लिए, वेलकम स्पीच के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं ब्रह्मा कुमार श्रीकांत भाई जी को। ब्रह्मा कुमार श्रीकांत भाई नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारी की राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के स्पार्क विंग के। आइए उनसे सुनते हैं स्वागत भाषण।
ओम शांति। इट इज माई ग्रेट प्रिविलेज टूडे टू वेलकम ऑल एस्टीम्ड स्पीकर्स एंड August gathering who are participating in this 14th Spirituality and Researchers Conference. and meditation retreat on inner tranquility, leading research for a perfect world, which is organized by Spark Wing of Brahma Kumaris. To begin with, I invoke the divine presence of our beloved Almighty, incorporeal Godfather Shiva, and his corporeal medium, our founding father, Prajapita Brahma Baba. In today's auspicious occasion, in this evening inaugural session, we have with us today very experienced, enriched, and honorable speakers who will be enriching us with their valuable thoughts, rich ideas, and experience on today's theme. I welcome from the bottom of my heart to our respected Dr. Dadi Ratan Mohini ji, Additional Administrative Head, Brahma Kumaris. I welcome Her Excellency Srimati Bebi Rani Maurya, Honorable Governor, Uttarakhand. I welcome Bhrata Shri Yogi Adityanath ji, Honorable Chief Minister, Uttar Pradesh. I welcome our respected Divine Brother, Bikaner Vair ji, Secretary General, Brahma Kumaris. I welcome Divine Brother, B.K. Mrutunjay ji, Executive Secretary, Brahma Kumaris. I welcome B.K. Ambika Behen ji, Chairperson, Spark Wing. I welcome His Excellency, Sri Mridul Kumar, High Commissioner, Malaysia, to Government of India. I welcome Padma Bhushan, Shri Dr. V.K. Saraswat, Honorable Member, Niti Aayog, Government of India. I welcome Padma Shri Dr. B.N. Gangadhar, Director, NIMHANS. I welcome Shri Mari Sashidhar Reddy, former Vice Chairman, National Disaster Crisis Management, Government of India. I welcome B.K. Alka Behenji, Journal Coordinator, Spark Wing, Maharashtra. I welcome B.K. Deepa Sambalpur, who sang a beautiful welcome song. I welcome the Kumaris from Brahma Kumaris, Jhanjarmangala, Katak. Those have performed very beautiful welcome dance. And I welcome Srinidhi Brother, who is MC of today's inaugural session. Dear Divine Brothers and Sisters, as all we know, this world is passing through a very tough situation, very tough phase in its journey. This is the testing time for all of us. But I hope this conference organized by Spark Wing will provide such a platform for the galaxy of speakers to shed light and guide us so that the days to come and times to come would present a rosy picture and can look to a life of confidence, trust, and fulfillment, which will benefit mankind across the globe. So friends, once again, hearty welcome. Thank you everyone for being here. And also I congratulate all of you. This 3 days journey will enrich you, and this will be thought-provoking for all of you. Thank you. Om Shanti.
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमार श्रीकांत भाई जी का, उन्होंने शब्दों से आप सभी का स्वागत किया ब्रह्मा कुमारी की तरफ से और स्पार्क विंग की तरफ से। आइए अब कॉन्फ्रेंस के बारे में जानते हैं। आखिर ये कॉन्फ्रेंस हमने क्यों ऑर्गेनाइज की है, इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत क्या है, इन सब चीजों के बारे में प्रकाश डालने के लिए स्पार्क विंग के चेयरपर्सन ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। दीदी जी ब्रह्मा कुमारी के बेंगलुरु विवीपुरम के सेवा केंद्रों की निदेशिका हैं और अनेकों दशकों से ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं को आगे बढ़ाने में इनका निरंतर योगदान रहा है। एक अकम्प्लिश्ड योगी हैं, उनके साइंस और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए समझ को हजारों लोगों ने सराहा है। उनके विजडम से इस कॉन्फ्रेंस के थीम के बारे में समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी डिग्निटरीज, स्कॉलर, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को देखते हुए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें बहुत खुशी हो रहा है और मुझे याद भी आ रहा है कि पहले 14 बरस हम सभी सन्मुख मिलते हुए माउंट अबू में सभी आपस में अपने विचार की लेन देन करते हुए हर एक अपने अपने फील्ड की एक्सपर्टाइज और अनुभवों के जो लेन देन किया है और उसके आधार से आप सभी जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ जुड़ते हुए जो हमें सहयोग दे रहे हैं उसके लिए उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस और जो भी स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स है, उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ साथ में आप सबसे एक 10 सेकेंड के लिए सिर्फ आप सारे विश्व को अपने मन पटल पे लाइए और देखिए सारे विश्व कैसा है। सारे विश्व को देखने से विश्व की चारों ओर जो हलचल है, सबकी जो पुकार है वो सुनाई पड़ रहा है। किसी का मन के हलचल है टेंशन के कारण, किसी के जीवन में ही असंतुष्ट होने के कारण, संबंधों की समस्याओं के कारण हलचल है। और धन की हलचल एक तरफ है तो प्रकृति की विकोप के कारण बहुत सारे हलचले हैं, तो तमोगुणी वायुमंडल की भी बहुत सारी हलचल है जिसके कारण सारी मनुष्य आत्माएं दुखी है और दिन प्रतिदिन पैनिक होते जा रहे हैं। तो ऐसे समय पर राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और जो भी विज्ञान सत्ता है वो हरेक अपने अपने रीति से सबको सहयोग देते हुए इन परिस्थितियों से मानवता को पार करने की कोशिश में है। और सारे विज्ञानी, स्कॉलर्स, जो भी रिसर्चर्स हैं, आपके कार्य तो सराहनीय है क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इट्स क्लाइमैक्स जो भी साधन किया हुआ है, जो सारी इतने बड़े ग्लोब को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, जो सेकेंड में कंट्री टू कंट्री कम्युनिकेट करना सहज हो गया है, उतना ही नहीं जो स्पेस में है उनको एक सेकेंड में आप कंट्रोल कर सकते हैं और उन चीजों को देख सकते हैं। और विज्ञान ने, स्पेशली मेडिकल साइंस ने, जो भी अब तक का मालूम नहीं था वो दुनिया के आगे रख करके कई समस्याओं का हल किया है नए नए संशोधन के आधार से। तो इतना सारा करते हुए फिर भी दिन प्रतिदिन नई नई चैलेंजेस आते जा रहे हैं, तो उसका सल्यूशन खोजने में भी है। लेकिन हमारा आप सबसे एक प्रश्न है, इतना सब कुछ होते हुए अगर हम अपने अंदर जाके और जीवन में देखें तो अंदर एक एम्प्टी स्पेस मिलेगा जो निरंतर संतुष्टता, निरंतर शांति, निरंतर खुशी जो होने चाहिए वो नहीं है। और उतना ही नहीं है, द टोटल वेलबींग जो होना चाहिए जीवन में वो भी कहाँ कमी है। कंट्री टू कंट्री तो हम जुड़ सकते हैं, लेकिन एक दो के दिलों से सेकंड में समीप होने का जो हो वो नहीं दिख रहा है। तो ये सब सामने रखते हुए ईश्वरी विश्वविद्यालय ने आप सभी स्कॉलर्स को, विज्ञानियों को एक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में लाने का जो संकल्प किया है उसके पीछे इतना ही बहुत बड़ा विशेष महत्वपूर्ण मकसद ये है कि आप सब मिल करके साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ साथ लाते हुए, उसके बीच में बैलेंस लाते हुए आप सभी सारे मानवता को मदद करें। कैसे आप सोच सकते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए कुछ तो मिसिंग है जो दुनिया की ये हालतें है। तो दैट इज द बिगेस्ट डायमेंशन विच इज द इमरजेंसी नीड ऑफ द आवर, वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को सुनते आप सोचेंगे कि स्पिरिचुअलिटी हम कैसे जीवन में ला सकते हैं, हमारा अपना अलग रास्ता है। नहीं, क्यों? क्योंकि हम सभी स्पिरिचुअल बीइंग्स विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस है, नॉट द ह्यूमन बीइंग्स विथ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी नीड स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट ए मेंटल डिसिप्लिन। स्पिरिचुअलिटी ये है कि शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस टू माई एटर्नल ट्रूथ, अपनी जो वास्तविकता है अपनी कॉन्शियस को एक बार हम शिफ्ट कर देते हैं तो फिर सारे हमारे जीवन की जो कार्य क्षेत्र में जो कोई भी चैलेंजेस है उसको फेस करना सहज हो जाता है। उतना ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी अगर रिसर्च के बीच में वैल्यूज एंड रिसर्च को ला देंगे उस फ्रेमवर्क के अंदर, तो उसमें जो मानसिक शक्तियां मिलेंगी, बिकॉज अनलेस स्पिरिचुअलिटी द इनर ट्रैंक्विलिटी इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मन की जो शांति है, स्टिलनेस एंड स्टेबिलिटी है, मन की जो सूक्ष्म साइलेंस है उसको अनुभव करते हुए एक क्लैरिटी आइडियाज के अंदर और संशोधन के अंदर जो फोकस चाहिए वो तब प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसकी गहराई में जाकर के सारी मानवता को इसकी जो लाभ है उसको सामने रखने की जरूरत है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं इसको बहुत सीरियसली अभी समय अनुसार इसको दुनिया के आगे लाना बहुत जरूरी है। इसमें आप सबको मैं एक ऐसे आदरणीय व्यक्तित्व को सामने लाना चाहती हूँ जो हमारी फॉर्मर साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, हमारी फॉर्मर प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम जी। उनकी जो विजन था, कई बार माउंट आबू में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी आइडियाज को शेयर करते हुए कहा था जब हमारे देश और देशवासी स्पिरिचुअलिस्ट बन जाएंगे, हमारे साइंस के अंदर ये बैलेंस आ जाएगा साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, तो हमारा देश नंबर वन होगा सारे विश्व में और हम सारे विश्व को गाइड कर सकते हैं। ये उनकी विजन था। आइए हम सब मिल करके उनकी विजन को सामने लाए और प्रैक्टिकल में लाए। उतना ही नहीं, द सुप्रीम फादर, द स्पिरिचुअल फादर ऑफ द होल वर्ल्ड, उनकी भी ये विजन है, उनकी ये चाहना है। द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जब साथ साथ चलेगा, जैसे गाड़ी के दो पहिया है, तो सारी सफलता बहुत सहज हासिल कर सकते हैं। तो इसी रीति से अगर आप भी विचार करेंगे तो अपने कार्य क्षेत्र में नई नई विचारधारा, नई नई इनोवेशंस के आधार से एक परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जो हार्मोनियस वर्ल्ड है, उसको लाना वो सहज हो जाएगा। और आप सबके आगे ये ईश्वरी विश्वविद्यालय तीन बातें रख रहे हैं, जिस उद्देश्य से हम आप सबको बुलाया है, तो वो है पहली बात, अभी जो बहुत जरूरत है तो सबके होलिस्टिक वेलबींग, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, अगर उस वेलबींग को सभी मानवता को एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं, तो हमें इसको बैलेंस में लाना, उस एंगल से खोज करना बहुत जरूरत है। एंड स्पेशली यंगर जनरेशन की वेलबींग, अभी के अनुसार द क्राइसिस ऑफ वैल्यूज, सब तरह की जो क्राइसिस देख रहे हैं उसको रोकना है, तो ये बहुत जरूरत है। और उतना ही नहीं, आप सबका भी निरंतर सर्व प्रकार की वेलबींग के साथ साथ निरंतर आप सबकी जो सक्सेस है, आप सभी सक्सेसफुल होकर के जीवन में एक खुशी, एक संतुष्टता का अनुभव करें, ये भी हम चाहते हैं। नई वर्ल्ड ऑर्डर, परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर, जहां हरेक एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के आधार से गुणशील और सत्कर्मों से संपन्न ह्यूमन बीइंग्स स्पिरिचुअलिटी के आधार से बन जाएगा, तो सारे विश्व धरा पर एक स्वर्ग दिखेगा। मीन्स द परफेक्ट वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स वेयर देयर इज नो लैकिंग्स। ये ईश्वरी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा उद्देश्य है, सारे सृष्टि में सुख शांति संपन्नता लाते हुए हरेक मनुष्य आत्माएं एक निश्चिंत, एक सुख शांतिमय, आरोग्यमय जीवन जिए, इसके लिए। और इस उद्देश्य में फिर से मैं कह रही हूं, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक दूसरे के साथ साथ जाना विद ऑल द बैलेंस बहुत जरूरत है। और स्पिरिचुअलिटी के बिगर द इनर ट्रैंक्विलिटी, और अंदर की एक गहरी शांति, एक स्टेबिलिटी लाना जीवन में, ये बहुत जरूरत है। इसलिए आप सबको इस कार्य क्षेत्र में आगे जाने के लिए शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं रखते हुए, आप सबको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो सर्व वर्गों के सभी विज्ञानी रिसर्चर्स इस कॉमन प्लेटफॉर्म में आकर के ये नया कार्य, नई खोज, नए रीति से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर करते हुए दुनिया को एक छोटी छोटी फार्मूले के रूप में देवे, ताकि वो सभी हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी रहे। थैंक यू सो मच। ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मा कुमारी अंबिका दीदी जी का। दीदी जी ने बड़े ही सुंदर और सरल शब्दों में हमें इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत के बारे में समझाया, आज के समय की आवश्यकता क्या है, इनर ट्रैंक्विलिटी आखिर रिसर्चर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और आज के समय के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज हमने समझी है। आइए इंस्पिरेशंस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के जनरल सेक्रेटरी हैं। ब्रह्मा कुमारीज के सेवाओं को देश विदेश में आगे बढ़ाने में इन्होंने कर्मठ योगदान दिए हैं। इनकी सेवाओं के चलते देश विदेश में, अनेकों देशों में जाकर ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करने का, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी ब्रह्मा कुमारीज को रिप्रेजेंट करने का मौका निर्वैर भाई जी का रहा है। आइए उनसे सुनते हैं इंस्पिरेशंस इस कॉन्फ्रेंस के लिए।
ओम शांति। परम प्रिय, परम पिता परमात्मा शिव बाबा और पिता श्री ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाप दादा के आप सब नूरे रत्नों, विशेष रूप से हमारी आदरणीय अंबिका बहन जी और स्पिरिचुअलिटी in research, 14th conference, स्पार्क की विशेष ये जो कंटिन्यूस सेवा चलती रहती है जिसमें देश विदेश के बहुत ही गणमान्य अनुभवी वेरी क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो आप सभी को आपकी इस इनर ट्रैंक्विलिटी लीडिंग रिसर्च फॉर ए परफेक्ट वर्ल्ड इस टेलीकॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले सभी ऑर्गेनाइजर्स स्पीकर्स और उसके साथ में जो लाभ लेने वाले भाई बहने हैं सभी को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर से दादी गुलजार जी की तरफ से दादी रतन मोहिनी जी की तरफ से व अन्य मधुबन निवासी बहनों और भाइयों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। विशेष रूप से मैं देख रहा हूं जैसा लक्ष्य भ्राता रमेश जी ने स्पार्क के लिए शुरू से रखा था कि कुछ नवीनता होनी चाहिए रिसर्च में भी नवीनता होनी चाहिए और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का समन्वय कैसे हो उसमें भी नवीनता होनी चाहिए तो उस बातों को सामने रखते हुए जो फाउंडिंग मेंबर हमारे जो रहे हैं उनकी भावनाओं को भी सामने रखते हुए और वर्तमान समय जो इस सारी कारोबार को संभालने वाले चाहे बहन अंबिका जी हैं चाहे हमारे भाई जो ज्ञान सरोवर में हैं शांतिवन में हैं और बाकी भाई बहनें भी जो रिसर्च में भाग ले रहे हैं उन सब को बधाई देता हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है इनर ट्रैंक्विलिटी इतनी इजी नहीं है इसके लिए बहुत गहन साइलेंस की जरूरत है साइलेंस ऑफ द माइंड साइलेंस ऑफ द थॉट साइलेंस ऑफ द इमोशंस कई बातें हैं उसमें जितना इनर साइलेंस आपकी गहराई में जाएगी और उस इनर साइलेंस में जो सदा ही ट्रैंक्विल है परमपिता परमात्मा जिन्हें हम शिव बाबा के नाम से कहते हैं और ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त रूप से हमें गाइड करते रहते हैं इसलिए बाप दादा शब्द यूज होता है तो बाप दादा को जब हम देखते हैं गुलजार दादी जी के तन के द्वारा जो उन्होंने जिस तरह से इनर ट्रैंक्विलिटी की बातें बहुत गहराई से समझाई हुई है और उसके लिए इतने अभ्यास की जरूरत जो है उस पर उन्होंने बल दिया हुआ है इसके लिए खास जो भाई बहने ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग का लाभ ले रहे हैं, वो महसूस करेंगे कि परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को खास आज्ञा दी कि पहले आप ईश्वरी ज्ञान को स्वयं धारण करो और उस धारणा के फल स्वरूप जो आपको उसका लाभ मिलता है, आपकी आंतरिक मन की स्थिति इतनी शांत सुखद सौम्य बन जाती है। उस अनुभव के आधार से आप अन्य आत्माओं की सेवा करो, अन्य जीवात्माओं की, क्योंकि आज के युग में चारों तरफ हर फील्ड में जो भी भाई बहने हैं जो विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबल पोस्ट्स के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, उनके सामने बहुत चुनौतियां आती हैं और उन चुनौतियों को देखना समझना और उनका सामना करना उनको पार करना, उसके लिए पावर ऑफ साइलेंस की जरूरत है। और पावर ऑफ साइलेंस तभी आएगी जब आंतरिक शांति होगी, इनर ट्रैंक्विलिटी होगी। और इसके आधार से, क्योंकि देखा गया है जो भी रिसर्च स्कॉलर्स दुनिया में जिस भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं आज के युग में, अभी COVID-19 के लिए जो वैक्सीनेशन उसके लिए रिसर्च हो रही है, कई कंपनियां कर रही हैं, कई साइंटिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि जब साइंटिस्ट अपनी आंतरिक साइलेंस में जाते हैं तो उस समय उनको वो परमात्मा की तरफ से विशेष इंस्पिरेशन मिलती है, टचिंग आती है और उस आधार से उनको विजुलाइज होता है कि क्या चीज कैसे काम करेगी, उससे किससे क्या लाभ मिलेगा। तो ये नई जो भी दवाइयों की इन्वेंशंस होती हैं या जो भी नई मशीनरी की इन्वेंशन होती है, हर जगह पर आप देखेंगे कि आंतरिक समरसता, आंतरिक शांति और आंतरिक सौम्यता, ये सब जरूरी है। तो मैं विशेष रूप से स्पार्क से संबंधित हमारी अंबिका बहन और सब उनके साथियों को बहुत बहुत दिल से दुआओं के साथ मुबारक देता हूं कि इतना सुंदर सब्जेक्ट आपने चुना है कि जो रिसर्च परफेक्ट वर्ल्ड के लिए, परफेक्ट वर्ल्ड तो हम सब जानते हैं, जिसके लिए परमात्मा पिता ने 84 वर्ष पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया और उनको निमित्त बनाया, उनको साक्षात्कार कराया देवी देवताओं का समय, देवी देवताओं का राज, देवी देवताओं की कार्य प्रणाली, उन सब बातों को वहां दर्शाया उनको। और फिर ब्रह्मा बाबा को विशेष निमित्त बनाया अपने तन मन धन से समर्पित होकर के उस खोज की तरफ लग गए और उनको देख करके शुरू में 84 वर्ष पहले 380 भाई बहने साथ 14 वर्ष के लिए साइलेंस का अभ्यास करते रहे, योग का अभ्यास करते रहे, ज्ञान के ऊपर चर्चा करते रहे और 14 वर्ष के बाद फिर चारों तरफ ईश्वरी ज्ञान का संदेश लेकर के हमारी आदरणीय बड़ी दादियां मातेश्वरी सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादी चंद्रमणि, दादी मनोहरिंद्रा, दादी गंगे और फिर हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में जो थी व अन्य दादियां जो बॉम्बे में भी थी और भी कई जगह पर, तो सभी ने विशेष रूप से मेडिटेशन के ऊपर जोर दिया और मेडिटेशन में भी मन की एकाग्रता, मन की साइलेंस, इसके ऊपर जोर दिया। क्योंकि जब मन की साइलेंस होती है, एकाग्रता होती है, तो परमात्मा के बहुत समीप अपने आप को महसूस करते हैं और परमात्मा पिता का, सर्वशक्तिवान का जो प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, उससे वो संस्कार परिवर्तन होते हैं और ईश्वरी संस्कार भरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का सब्जेक्ट है और मैं समझता हूं वो परफेक्ट वर्ल्ड में मनुष्य परफेक्ट चाहिए जिनको देवी देवता कहा जाता है, और उस समय पांचों तत्व भी परफेक्ट सुख देने वाले होते हैं और इसी तरह से आपसी संबंध भी बहुत प्यार के, रिस्पेक्ट के, आदर के, शालीनता के इतने सुंदर संबंध बनते हैं भविष्य की दुनिया में। तो सत्युगी दुनिया की या परफेक्ट वर्ल्ड की स्थापना के लिए विशेष ये जो रिसर्च है ये बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और इस ऐसी बात लीडिंग साइंटिस्ट उनके दिल में ये बात लाना, स्पिरिचुअलिस्ट और साइंटिस्ट तो जो भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं और सबको मेरी इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ईश्वरी जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात हर एक के दिल में रहे तो सफलता ही सफलता होगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्भय भाई साहब का, उनके प्रेरणादायी वचनों से हम सबको मार्गदर्शन मिला है ऐसी मैं आशा करता हूं। अब आशीर्वचन लेने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे महान विभूति को जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक 96 वर्ष की आयु तक आध्यात्म को अपने जीवन का साथी बनाया है और ईश्वर को साथी बनाकर अनेकों लोगों को ईश्वर का साथी बनाया है। 96 वर्ष की आयु में होते हुए भी इन्हें हम युवा दादी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल हेड के रूप में दादी जी अपनी सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारीज के साकार फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के हाथों से पले, उनके जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों से ओतप्रोत दादी जी का जीवन आज उनके नाम के जैसे ही सार्थक है। दादी जी का नाम ब्रह्मा कुमारी रतन मोहिनी जी हैं। जैसे उनके नाम में रतन है, उनके मुख से भी उनके जीवन से भी इन्हीं ज्ञान रत्नों की खुशबू निकलती है। आइए दादी जी से सुनते हैं आशीर्वचन इस कॉन्फ्रेंस के प्रति।
वर्तमान समय संसार एक विकट समस्या से गुजर रहा है। हर एक के मन में डर है, चारों ओर भय का वातावरण है। हर कोई अपने अपने ढंग से इसके समाधान में लगा हुआ है। सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है, परंतु देखा जाए तो समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं है। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है और इंसान का जीवन और ही बदतर होता जा रहा है। तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, मानसिक रोगों में वृद्धि हो रही है, चारों तरफ धर्म की गिलानी हो रही है, जीवन जीना कठिन होता जा रहा है। परंतु यह संसार हमेशा से ऐसा नहीं था। हमारा बीता हुआ कल बहुत ही सुखमय एवं गौरवशाली था। संसार में सुख था, शांति थी, परस्पर प्रेम था। यह वही भारत देश है जिसके लिए गायन है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। जहां पर न तो घरों के ताले लगते थे, न कोई अधर्म था, जहां का हर इंसान राधे और कृष्ण के समान था। यह संसार स्वर्ग था, रहने के लिए एक बेहतर स्थान था। परमात्मा कहते हैं यह संसार फिर से एक बेहतर संसार बन सकता है। इसके लिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिलकर कार्य करना होगा। दोनों के मेल से ही यह संसार बेहतर बन सकता है। संसार में जो भी समस्या है, हर समस्या के पीछे इंसान की नकारात्मक मानसिकता है। जब तक इंसान की सोच सकारात्मक एवं कल्याणकारी नहीं होंगी, संसार की समस्याएं हल नहीं होंगी। और इंसान की सोच की बदलने की ताकत, उसे सकारात्मक बनाने की ताकत केवल अध्यात्म के पास है। स्पिरिचुअलिटी ही हमारी सोच को सकारात्मक बना सकती है और उसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मानसिक बल प्रदान करती है तथा हमारे अंदर मूल्यों को जागृत करती है। संसार की सर्व समस्याओं का यही एकमात्र हल है। परंतु संसार आज के महत्व को समझ नहीं पा रहा है। आज के इस वैज्ञानिक युग में यदि इसके महत्व को संसार को समझाना है, तो वो आप सब बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेडिटेशन के प्रभाव को वैज्ञानिक ढंग से संसार को आप सब ही बता सकते हैं। लोग अध्यात्म को ब्लाइंड फेथ मानते हैं, परंतु अध्यात्म ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि यह भी एक साइंस है और सदा सर्वदा मानवता के हित में है। यह बात संसार को समझाना है। आप सब समझाएंगे तो लोग सहज समझेंगे। स्पार्क विंग लंबे समय से यही प्रयास कर रहा है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों साथ मिलकर काम करें, तभी संसार में शांति आएगी। मेरी भी यही शुभ भावना है कि पहले मेडिटेशन को आप सब खुद सीखे और उसके हर एक पहलू को अपने जीवन में अप्लाई करे, फिर इसके इफेक्ट को संसार के सामने अपने अनुभव के साथ रखेंगे तो संसार इसके महत्व को सहज समझेगा और संसार में शांति आएगी। आप सबके बोल में ताकत है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्व को ओम शांति शांति।
दादी जी, आपके आशीर्वचनों के लिए धन्यवाद कहना भी बहुत छोटा होगा। लाखों लोगों के जीवन में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, आज आपने वही समय हमें दिया है और हमें मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कॉन्फ्रेंस के प्रति गुड विशेस देने के लिए, अपनी शुभकामनाएं देने के लिए हमारे बीच एक अनूठे व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं, ब्रह्मा कुमारीज के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भाई जी। ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय जी की एक अनूठी मिसाल है। ब्रह्मा कुमारीज के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में लागू करवाना, वैल्यू एजुकेशन को स्कूली बच्चों तक बचपन से ही बच्चों में इन चीजों का इनकल्केशन होना इनके जीवन का उद्देश्य रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के शिक्षाओं को अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयामों से देश विदेशों में लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों कॉन्फ्रेंसेस का ऑर्गेनाइजेशन करना इनकी खूबी रही है। आइए उनसे सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रति गुड विशेस।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। It gives me an immense pleasure, privilege and honor to participate in this web seminar. I am very happy to note that scientists, scholars, researchers and very intellectual brothers and sisters are gathered here, especially to know what is Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya's contribution in making a good life, happy life and spiritual life, enlightened life. And also what kind of a research work Brahma Kumaris are offering and how we associate ourselves for the benefit of our life and our family life and our society in general also. So I salute all the scientists and scholars for their visit to this Ishwari Vishwavidyalaya or anywhere else. So I am proud and happy to say this godly knowledge helps us in making our conscious, pure conscious, peaceful conscious, a blissful conscious. The very purpose of all research work, education and our karma is to make an individual a peaceful being, loveful being, knowledgeful being, powerful being, blissful being. So that's why we opt for various methods, various knowledge to develop this ultimately healthy life and happy life. So the research work should give a clean and clear consciousness. And those who have got tranquility in consciousness and stability in consciousness, peaceful in consciousness, and avoid waste thoughts, negative thoughts, impure thoughts, unnecessary thoughts, and all these things comes out of ignorance, lack of power, lack of clarity, lack of understanding, and without knowing the implications of negativity, how it influence our consciousness, how it influences in our health, how it influences in the society, how it creates negative vibration around us and in the entire universe. So that's why what we need today is cleaning our consciousness, improving the quality of thoughts, and any negative thoughts, impure thoughts, unnecessary thoughts, waste thoughts definitely makes our life miserable, difficult, and they cannot enjoy life, they cannot lead a happy life, and they cannot lead a peaceful life also. So Ishwari Vishwavidyalaya offers this godly knowledge and teaches Raj Yoga meditation for purifying the human consciousness and also clean our nature and keep the environment peaceful, and thereby we can achieve once again a new world based on truth, based on love, based on peace, based on good understanding, based on enlightened life. So I wish and I hope, and all the brothers and sisters, those who have come far and wide places to Brahma Kumaris Ishwari Vishwavidyalaya, will have a glimpse of this godly knowledge, and they also develop a beautiful, a wonderful, eternal relationship with the divine, and that divine relationship makes you ultimately pure and peaceful, and they can go for a wonderful research work, application of this knowledge in various field of human endeavor, and thereby they can achieve 100% success, and they can contribute to the society very much, and ultimately their contribution in making a new India, better India, new globe, are called peaceful globe, and entire humanity will get that benefit of it. Once again I say salute to all the brothers and sisters, scientists, research scholars and Raj Yogis for having this beautiful conference, web seminar, and through this seminar you can enlighten yourself, you can make others also get enlightenment, and also contribute to the society, and thereby your cooperation, your participation in the divine mission of making this world a better place will be accomplished. With this, I say Om Shanti, I salute everyone, and I say pranam to all of you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का। अब मैं कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। इस इनॉग्रल सेशन के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी माननीय गवर्नर हैं उत्तराखंड राज्य की। इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनकी शुभकामनाएं, उनकी आशाएं क्या हैं, उनके मार्गदर्शन क्या हैं, आइए जानते हैं उनसे।
माउंट आबू से इस पार्क विंग की कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण ममता बहन आगरा द्वारा मुझे मिला। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान को आंतरिक शांति जैसे प्रासंगिक विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन आयोजित करने के लिए बधाई देती हूँ। यह सराहनीय कार्य है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान आध्यात्मिक विचारों के प्रचार प्रसार द्वारा विश्व की शांति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। किसी ने सच कहा है कि जितना सुंदर हम अपने शरीर को सजाते हैं या सुंदर बनाते हैं, उससे भी अधिक सुंदर हमें अपनी आत्मा को बनाना चाहिए। वो जितनी शुद्ध और जितनी सात्विक होगी उतना ही प्रभु के करीब होगी और प्रभु की नजर उस पर बनी रहेगी। मैं लगभग 25 वर्षों से आपके ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ। आगरा में जब विमला बहन थी वो मुझे बड़ा स्नेह करती थी और आशीर्वाद देती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आज भी मन से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आप लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ। निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ विश्व की निर्माण के लिए प्राणियों के लिए और खासकर मानव के आंतरिक शांति के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। यदि शांत मन एवं प्रसन्न मन से कोई भी कार्य किया जाता है तो वह कार्य सदैव मानवता के कल्याण के लिए एवं उत्थान के लिए होता है। विश्व के कल्याण के लिए आत्मिक शांति बहुत आवश्यक है। मन को शांत एवं प्रफुल्लित रखने के लिए ध्यान सबसे सुंदर उपाय है। मेडिटेशन का प्रत्येक व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा उसकी जीवन शैली सुखमय एवं शांतिपूर्ण बनती है। वर्तमान में लोगों में, विशेषकर युवाओं में, छात्र छात्राओं को मेडिटेशन के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। COVID-19 के संकट काल व लॉकडाउन की अवधि में जन सामान्य विभिन्न मानसिक चिंताओं का सामना कर रहा है। ऐसे में मेडिटेशन की सहायता से लोगों को आंतरिक शांति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी तथा COVID-19 को भी हराएंगे। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे शिवानी बहन से भी मिलने का अवसर मिला है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत इस कार्यक्रम के माध्यम से बधाई देती हूँ कि वो सभी जनमानस की शांति के लिए, आंतरिक शांति के लिए प्रसार प्रचार कर रही हैं। मैं आप लोगों को पुनः एक बार बधाई देते हुए इस सेमिनार को सफल बनाने की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
उत्तराखंड की राज्यपाल महोदया श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को हमने सुना, उनकी प्रेरणाओं को सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन आशीर्वचनों के लिए, इन मार्गदर्शनों के लिए। अब सुप्रेरणाओं के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे अगले वक्ता हैं हिज एक्सेलेंसी श्री मृदुल कुमार जी, हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया टू इंडिया। इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनकी शुभ आशाएं लेते हैं, आइए सुनते हैं उनसे।
गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द इंडियन हाई कमीशन इन कुआलालंपुर, एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, डॉक्टर दादी रत्न मोहिनी जी, सेक्रेटरी जनरल निर्वेर जी, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मृत्युंजय जी, चेयरपर्सन स्पार्क विंग ब्रह्मा कुमारी अंबिका जी, डॉक्टर वी के सारस्वत ऑनरेबल मेंबर नीति आयोग, डॉक्टर ए के सिंह डायरेक्टर जनरल लाइफ साइंसेज DRDO, प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर डायरेक्टर निमहंस बेंगलोर, डिस्टिंग्विश्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आई एम सो डिलाइटेड टुडे टू ज्वाइन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द 14th Spirituality in Research International e-conference. May I first of all congratulate SPARC, Spiritual Applications Research Center of Brahma Kumaris Mount Abu, for organizing this very meaningful and timely event. Today's theme, Inner Tranquility, Leading Research to Perfect World, is so apt and relevant in contemporary times. My dear sisters and brothers, from environmental degradation to human conflicts, the world is becoming a very difficult place to live in. The very foundation of humanity, existing in harmony with the nature, is shaking to its core. The whole humanity is facing difficult time, battling COVID-19 pandemic. Our ways of conducting day-to-day affairs are witnessing fundamental shifts. Social distancing has become the buzzword. We learnt in schools, I remember, that human beings are social animals. COVID-19 brought human societies to live in very different ways, as people are obliged to stay indoors for the fear of contracting the deadly disease. The loneliness of quarantine and self-isolation is leading to mental health challenges and related issues. I was talking to Sister Meera, who just returned to Kuala Lumpur from Delhi after getting stuck there because of COVID-related issues, and she was undergoing quarantine at the Kuala Lumpur hotel. I asked her about the fear of being lonely and getting stuck. Hers was one of the most beautiful replies I could ever heard, and it came from a person who is at peace with oneself. She said, it gives me more time to introspect and meditate. She is at peace with herself. My dear sisters and brothers, this is the strength of spirituality which leads to inner peace, which in turn leads to peaceful and harmonious societies. The path that Brahma Kumaris teach us is of inner tranquility through spiritual awakening. But how to convince the doubting minds that this is the right path? There has always been conflict in the Western world between scientific and spiritual approaches. To the doubting minds, these approaches are non-reconcilable. But spark at Brahma Kumaris has been created to bring out this inherent and very deep connect between spirituality and scientific research. My dear sisters and brothers, in research, stillness and clarity of mind is of utmost importance. To search for the truth of anything, any phenomena, it needs total focus and a sense of purpose. Inner peace is necessary for the same. Recognizing the self and its connect to the source leads one to the state of peace with oneself. It's often said, in silence, there is tranquility. In tranquility, there is real peace. And in real peace, there is emergence of quality thought that serves the right objective and purposeful findings to its intended outcome and new and relevant discoveries. Unless one is peaceful and calm, the choice of research statement, the sphere of data collection, the methodology and outcome of the research may not be as desired. This became evident to me and my other colleagues at the Indian High Commission last year when Brahma Kumaris organized a workshop in spirituality for us with a totally and dedicated scientific approach. Practicing spirituality leads to greater efficiency in your day-to-day work, in your work areas. Scientific evidence to this was presented through rigorous scientific research, which was carried out by SPARC and other associated organizations. I therefore firmly believe that researchers from all corners of the world who have gathered here today can create new empirical studies approach based on inner ecology of tranquility to bring about the best of the outer ecology of the new world striving towards perfection. I am hopeful that the conference can lead us into the new wisdom, mechanism and functionality of research to attain the desired outcome of bringing peace and harmony to make this world a better place to live in. With this, I once again congratulate each and every one of you for coming together in this worthy effort. I wish SPARC and the whole congregation all the very best in this worthwhile endeavor. I thank you. God bless.
हमारे साथ जुड़े थे हाई कमिश्नर ऑफ मलेशिया टू इंडिया श्री मृदुल कुमार जी और उन्होंने बहुत ही सुंदर शुभकामनाएं हम सबके लिए दी. आइए हमारे साथ कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, उनसे उनकी शुभकामनाएं लेते हैं. हमारे अगले गेस्ट ऑफ ऑनर एक ऐसे ही जाने माने व्यक्तित्व हैं, पद्म भूषण डॉक्टर वी के सारस्वत जी. भारत सरकार के नीति आयोग के मेंबर हैं और एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं. आइए इनसे करते हैं बातचीत और इनसे सुनते हैं इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनकी शुभकामनाएं.
डियर स्पार्क ई कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द वर्ल्ड ओवर, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज दैट द स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर स्पार्क, रिसर्च विंग ऑफ आरई एंड आरएफ ऑफ ब्रह्म कुमारीज, हैज मेड मी ए पार्ट ऑफ इट्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस बाय इन्वाइटिंग मी टू द इनॉग्रल सेशन ऑफ 14th SIR कॉन्फ्रेंस. Any organization celebrating Silver Jubilee year has to have some real content, relevance, consistency, perseverance and commitment. I am happy to note that Brahma Kumaris, the parent organization for both RERF and Spark Wing, has global reach and is committed to making human life better through its 21 service organizations catering to the spiritual need of people from different backgrounds and professions. It is a rarity that one finds the community of researchers, which is a minuscule minority, get the attention of a world-renowned organization that serves the cause of humanity. As we know that a researcher's role lacks the glamour of popularity and recognition that other professions enjoy till they succeed. They pass through many inner traumatic situations while pursuing their research work, a lot of uncertainties, bottlenecks, lack of time, and overriding demands of society in general and organizations and the guides in particular. I have to appreciate the elasticity and adaptability of the organization. It readily took up the challenge of the COVID-19 pandemic time and is poised to reap the multifold benefits of the change atmosphere all around. The COVID-19 pandemic coupled with natural disasters has resulted in many crises: financial, health, job losses, social, interpersonal, intrapersonal. These have left a deep scar on the psyche of the entire world and have thrown humanity into the clutches of fear, stress and anxiety. It is under these circumstances that the organization has taken up a theme which is very suggestive: inner tranquility, leading research for a perfect world. The deliberations on this theme will lead the participant to seek inner support. Such a support, rarely available from outside, needs inner tranquility. It can be attained by applying the power of silence in our day-to-day life. It requires proper training in meditation, regular practice, a lot of patience and incorrigible optimism. When one strives to fathom the deep recesses of the mind and the spirit, he sees the larger picture as an objective observer. The whole activity provides an objective, correlative, a kind of detachment. This kind of detachment creates inner poise and facilitates one to see things beyond horizon. Life then becomes a constant journey. One is able to scale newer and newer horizons incessantly. The deliberations of the experts from various fields will go a long way in shaping the mindsets of the researchers and organization they represent. There is dire need of non-ritualistic, genuine spirituality to keep the spirits high and instill waves of hope, fearlessness and security during the critical times we are passing through. The aims of the conference cover all the concerns of the society in general and researchers in particular, as they address the emerging challenges in humanity with science and spirituality for a better and sustainable future. They also try to provide a common platform to experts from different fields of research and foster integration of spiritual values with the multidimensional interdisciplinary research. I understood that Brahma Kumaris had taken a lot of initiative since the coronavirus outbreak to serve the society. With these words, I congratulate the organizers for doing such a quality service for the researchers and through them, the organizations, society, country and ultimately the cause of humanity. Jai Hind, Vande Mataram, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.
Bahut bahut dhanyawad Dr. Saraswat ji ka unki prernaon ke liye. Hamare agli distinguished guest, Dr. B.N. Gangadhar ji hain. भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा है. फिलवक्त ये निमहांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोलॉजिकल साइंसेस बेंगलुरु के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं. आइए सुनते हैं उनसे इस कॉन्फ्रेंस के प्रति उनकी शुभकामनाएं.
एट द आउटसेट लेट मी कंग्रेचुलेट द ब्रह्म कुमारीज मिशन. द आश्रम इज कंडक्टिंग थ्रू देयर body called as a Spark, the annual conference which is discussing about spirituality and tranquility, which needs to be researched and applied in day-to-day practice. Yoga that is being promoted by the Brahma Kumaris and of course by many other yoga gurus has made a change in our society. Yoga has been able to connect people, increase our compassion, and turn us more spiritual than being worldly. All these are healthy changes in a society, and is healthy for the society's well-being. So, Brahma Kumari's current conference, which is going to discuss about these changes following yoga, have had basic evidence from the researchers elsewhere. I want to illustrate some which we have done here at Nimhans to demonstrate yoga actually rises to the expectation that the world signifies. Yoga is huge, a connection, a blending of my personal consciousness to that cosmic consciousness. In the process of my transcending to connect myself with that cosmic consciousness, I think the initial stages I start connecting with other people around me. This ability to connect interconsciousness to begin with before going on to the supra-consciousness or the cosmic consciousness is something that we have actually seen happening in clinical research. Yoga connects people. In fact, one of the experiences of yoga which people report amongst the common experiences is that I feel connected. I feel connected with the society, I feel connected with those who do yoga with me, I feel connected with the world, and I feel I am not alone, I feel more confident, I overall go on to feel that it is the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam which generated because of yoga, and so I am not alone is a feeling that yoga generates. No wonder the International Day of Yoga, the 21st June, attracted hundreds, thousands, lakhs of people to come together, jointly do the yoga. And we saw the massive crowd on the Janapath on the day the Honorable Prime Minister did yoga, the 21st of June 2015. So yoga connects. Yoga connects people. Yoga connects consciousness across individuals. Yoga connects my consciousness with that supra or the cosmic consciousness. So this connection, does it happen really? If it does happen, the other person who is connected with me will be able to appreciate my emotions and vice versa. He is able to see when I am down and I am also able to see when this person is angry and so on and so forth. This ability to recognize on each other's emotional situation is something that we lose when we develop a condition called as schizophrenia. Although many people might not be as sensitive to recognize others' reactions, but in schizophrenia individuals, it is pathological. These individuals are not able to appreciate other individuals' emotional reactions. And this has been tested and a well-documented social cognition deficit in schizophrenia. Yoga, when administered to schizophrenia individuals, corrects this social cognition. With practice of yoga in schizophrenia, even after their psychotic symptoms have come down, even when their severe mental symptoms have come down, the cognitive deficits, the social cognitive deficits remain, and practice yoga for 3 months or longer, there is a change in their socializing or emoting behavior. They are able to perceive the changes in the other individual's faces, the changes in other individual's emotions, and this has been well documented in clinical trials. Individuals of schizophrenia, when they practice yoga, are able to actually understand the abstract meaning of the actions of others, which is very supportive. So in other words, the individual is able to emote with other people, understand others' feelings and react appropriately, and the other person sees the individual of schizophrenia who has actually practiced yoga as a person who has now become more warm, more empathic, and a person who is what his usual self was. And this experience, which the family members report, has been fairly consistently recorded. So why does this change happen is also some questions that we have raised and asked. One of the hormones called as oxytocin, which helps us to make us feel connected, make us feel involved, make us feel comfortable, make us feel happy and relaxed. It's also called as the cuddling hormone. The mother gets this feeling when she is feeding the baby, because the oxytocin is released in the body and the oxytocin acts on the brain centers which produce this emotion. And practice yoga in individuals of schizophrenia led to increases in the levels of oxytocin. Interestingly, schizophrenia individuals have low oxytocin, and this perhaps explains why they have significant cognitive dysfunction, the social cognitive dysfunction. Practice yoga, the levels of oxytocin rise, and correspondingly they also get improvements in these social cognition skills. Like, for example, I mentioned their ability to recognize emotions on faces of the individuals. So oxytocin is one mechanism whereby yoga helps to improve the social connectedness. I believe there is also a neurophysiological change that happens following practice of yoga. We have had some leads that yoga facilitates the mirror neuron function, although this has to be more emphatically demonstrated. But we have one more lead in schizophrenia individuals. Schizophrenia individuals in their brain, although when we do a scan, we may not get anything seriously abnormal other than loss of some gray matter, enlarged ventricles, which could also happen in an age-dependent manner in many other individuals. But more recently, thanks to the technology where we are able to record what is called as resting state functional magnetic resonance imaging. So how my brain centers are connected with each other is something that I can examine in schizophrenia individuals. And there is some evidence that in schizophrenia individuals, one of the biggest network called as the default mode network is actually disconnected and so has become less coherent. Different centers connected work together and coherently, and this coherence is lost in schizophrenia. You give them medicines, they get better, but this loss of coherence continues. You give antipsychotic drugs along with yoga practice, a 3-month yoga practice or a 6-month yoga practice, when you repeat their functional magnetic resonance imaging, these networks, the resting state default mode networks, become more coherent. This has been recently demonstrated in our laboratory in a randomized clinical trial. Individuals who practiced yoga versus those who were given to wait for yoga intervention were different with respect to the change that they obtained in the coherence properties of the default mode network after the introduction of yoga, or of course after waiting for that period. Schizophrenia individuals who practice yoga obtained better coherence in their default mode network, suggesting that the connectivity within the brain also gets better. So, as the name suggests, yoga connects the mind with the other functions of the mind. Yoga connects the networks in the brain which have been dysfunctional. Yoga connects the individuals across other people. They are able to emote better. To facilitate that, it produces an hormone. Overall, yoga increases connectedness feeling in the individuals, which they have all been reporting, but we have now data from a neurobiological perspective. So let's all practice yoga, obtain this feeling of connectedness. With the connectedness, and we are more rooted to that spiritual bondage between people, and we achieve quietude, tranquility, which is what is required in today's very, very speedy world, a speedy world with lot of rages, a speedy world with lot of pathology, both in mental and in physical sciences of the individual. So we must practice yoga, which is what is going to keep us at peace and the world at peace.
इस कॉन्फ्रेंस के प्रति अभी हमने विचार सुने पद्मश्री डॉक्टर बी एन गंगाधर जी से. आइए अब कुछ अनुभवों की लेन देन करते हैं. हमारे साथ श्री मर्री शशिधर रेड्डी जी हैं, जो फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन हैं एनडीएमए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. इनके अनुभवों से जानते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या अनुभव ऐसे किए हैं। इनके अनुभवों का लाभ हम सब लोगों के लिए।
ओम शांति। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट द स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस रिसर्च सेंटर स्पार्क ऑफ द ब्रह्मकुमारी ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूइंग इट्स 14-year-old ट्रेडिशन ऑफ एन एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड मेडिटेशन रिट्रीट। Understandably, this year it's a virtual conference, and this is happening in the presence of Kuldeep Didi, Ambika Didi in Gyan Sarovar, and Sister Sumalata at Shanti Sarovar in Hyderabad, who has been instrumental in inviting me to this event. We have seen natural disasters in the past. It's nothing new. But when major disasters, even the most devastating disaster has occurred, it has impacted a certain region or a certain state, whether it be India or anywhere else in the world. And in such an event, it is possible to mobilize all the resources that are available elsewhere to focus on the target area to provide relief, rescue, and rehabilitation. What we have, and of course I have seen this and managed disasters when I was with the National Disaster Management Authority till 2014. But what we are witnessing, what the whole world is now witnessing, is that this pandemic has pushed us to the limit. It is beyond the limit. This has impacted every country universally, and almost every living being, every human being on the planet has felt this impact in varying degrees. Like any disaster, this has been a great denominator, impacting everyone, all sections of the society, the rich and the poor, the haves and the have-nots. We are yet to see the light at the end of the tunnel. Though it's flickering, the hope is an early vaccine and better treatment methods to make this less dreadful and release people from this constant pressure of uncertainty, of fear, that they might get infected by COVID-19. Normally also, we are aware that a significantly large number of people seek help to attain inner peace and tranquility. Due to the pandemic, a large number of people have been impacted. There are reports that at least 1/3 of all people in different countries have been exposed to psychological and behavior and stress and led to behavioral issues. And this is something very significant. The lockdown policies implemented in different countries have been such that at a time we felt as if the entire planet has come to a standstill. We could see on many occasions wild animals trying to come into the areas which used to be their grazing land. We've seen so many images on television when the lockdown was implemented strictly in several countries. I have come across a paper which talks about, which is titled Unequal Effects of the COVID-19 Pandemic on Scientists. And in that it states that scientists working in different disciplines are unevenly affected. Those who are connected with laboratories and sensitive experiments, and those who are in the faculties of biological sciences, chemistry and chemical engineering, reported the largest decline of research time of about 30 to 40% compared to the pre-COVID times. And the least affected are those which are not involved in equipment intensive activities, like from those working in the field of economics, in computer science, mathematics and statistics. And they have reported the lowest decline. Interestingly, the difference between these two types of scientific activities, the difference is almost fourfold. Then it is also said that female scientists with young dependents have been disproportionately affected. And besides this, there are many other interesting statistics in that paper. At the same time, those who are involved in virology, in biochemistry, in biosciences, have been able to come together, forge alliances, share scientific discoveries. And I think this kind of a cooperation, which is taking place in a very unprecedented manner, is helping us reach the target of identifying a vaccine very soon. Then there is a category of people where research is supported by grants for PhD students and researchers. They are also going to suffer a lot. They've not been able to gather the data that is required for them to get their degrees, and as such, this is going to mean a lot of waste of time and resources and money. This is another scenario. I recall my own experience when I was a student at the Kansas State University in America. Way back in 1971 to 73, my PhD thesis was based on a field study, and it was a study on crop production involving soybeans. If I had to be doing that kind of a field study at this particular point of time, you can all imagine what it could imply. People have to rethink on how field research needs to be done. Over the years, even in normal times, people have been doing different kinds of meditation for their own physical and mental well-being, so that they can be better equipped to deal with the challenges that they have for the welfare of the people. Overall, mental peace and tranquility for people is more important, as I said, under the prevailing circumstances. And I think Raj Yoga meditation, which is a very simple thing, can be extremely useful for all our scientists, and it can be an extremely important tool to achieve inner tranquility. I hope that all those who are participating in this conference and viewing this globally will find that this is a good opportunity to understand the potentiality of Raja Yoga and what role it can play in improving our inner tranquility, our peace of mind, our capacity, our capabilities and capacity to work, pursue various scientific activities that people are involved in. Let us pray that this pandemic will come to an end, if not in totality, at least come down to such an extent that people are able to, the impact of this comes down and people are able to get over it. And meanwhile, let us once again focus on trying to tread the path of Raja Yoga meditation to make ourselves better prepared during these COVID times. I once again thank Spark for giving me this opportunity to share some thoughts with all of you. I had the opportunity of being the chief guest in 2017. The subject then was inner resilience. And I think resilience will come with inner, with tranquility and our efforts to make this world a better place. ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री मारी शशिधर रेड्डी जी का उनके अनुभवों के लिए। अब कुछ अनुभव हमें करने भी हैं। तो इस इनॉग्रल सेशन के अंत में हम एक मेडिटेशन एक्सपीरियंस करते हैं। गाइडेड मेडिटेशन के लिए हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी अलका दीदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसके स्पार्क विंग महाराष्ट्र के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए चलते हैं गाइडेड मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा के अति प्रिय संतानों, मेरे सर्वदैवी भाई बहनों, आज स्पार्क विंग की तरफ से आयोजित 14वीं सर कॉन्फ्रेंस एवं मेडिटेशन रिट्रीट में अपने अपने स्थानों से सहभागी हुए अमूल्य रत्नों का आज अमूल्य विचारों से ये सुसज्जित मंच जरूर विश्व को शांति की ओर ले चलेगा। अभी हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा स्वयं को शांति की अनुभूति करेंगे। संकल्प दे, अपने स्वधर्म में अपने आप को ले चलिए। शांति मुशात्मा का स्वधर्म है। शांति ये मेरा गुण है तो शक्ति भी है। शांति मेरा खजाना है। मेरा निजी स्वभाव शांति है। ये मेरी ओरिजिनल नेचर है। स्वयं को सुनिश्चित करते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये शांति की शक्ति है। मुझ आत्मा को पांच तत्वों से परे अपने ओरिजिनल घर शांति धाम की ओर आकर्षित कर रही है। ये मुझ आत्मा का निज धाम है। यहाँ अखंड शांति है। शांति के सागर परमात्मा का ये निवास स्थान। मुझ आत्मा का अपना घर है। यहां मैं असीम शांति का अनुभव कर रही हूं। ये शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रहे हैं। इसी स्थिति को लेकर मैं अपने ओर नजर डालती हूं। स्वयं का स्वरूप एकदम शांत प्रसन्न मन में जो भी संकल्प है वो श्रेष्ठ संकल्प ही है। शांति की स्थिति हर आत्मा के लिए रहम का भाव दृष्टि में वर्ष कर रहा है। सर्व के प्रति मन में शुभ भावना इमर्ज हो रही है। सभी परमात्मा की संतान सब आत्मा रूप में मेरे भाई है। ये भाई भाई की स्मृति मन को शांत कर रही है। स्वयं परमात्मा मुझे कह रहे हैं ये शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यही जीवन का आधार है। इसी स्वधर्म में स्थित होकर अब मैं सहज ही हर कर्म कर सकती हूं। हर कर्म मेरा शांतिमय धर्म विश्रांति में जीवन शांति में मेरा संसार शांति में
बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी जी का इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए और मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करता हूं इस कॉन्फ्रेंस के पहले दिन इस उद्घाटन सत्र में आप सभी हमारे साथ जुड़े। इनर ट्रैंक्विलिटी कितने इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को करने के लिए और रिसर्चर्स के लिए एक बेहतर और परफेक्ट वर्ल्ड के लिए। अगर हम अंदर से शांत नहीं है, अंदर से कामनेस नहीं है या ट्रैंक्विलिटी नहीं है तो शायद बाहर भी हम वो चीज नहीं ला पाएंगे। कहा भी जाता है द आउटर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इनर। तो यही कोशिश मैं आशा करता हूं कि हम सब करेंगे इस कॉन्फ्रेंस के तीन दिनों में कि हम अपने अंदर को ठीक रखने की, उसे ट्रैंक्विल रखने की कोशिश करें ताकि हमारा बाहर भी बेहतर हो, परफेक्ट हो। आज के दिन के लिए बस इतना ही। अगले दो दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस में हम बहुत सारे स्पीकर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। कल की सुबह के सत्र में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ओम शांति। UNEP India and URI come together for a Faith for Earth dialogue with faith leaders. Sadhguru